आयु सुबह जल्दी ही हॉस्पिटल निकल गई थी। आज वो कुछ खास एक्साइटेड थी क्योंकि एक फेमस न्यूरोसर्जन उनके हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए आ रहा था, जिसका नाम डॉक्टर सिंघानिया था। आयु ने आरव को बताया कि वो डॉक्टर उसका क्रश है और उसे देखने के बाद ही उसने न्यूरोसर्जन बनने का डिसाइड किया था। आरव ने आयु को डॉक्टर सिंघानिया से मिलने से मना किया था, फिर भी आयु अपने लिए अलग से ड्रेस और बाकी सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहीं आरव को आयु को रोकने का मौका नहीं मिला। उसके पास माहिरा का मैसेज आया था और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी मीटिंग होने वाली थी। कुछ ही देर में आरव तैयार होकर माहिरा के होटल पहुंच चुका था। आरव ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और बिल्कुल उसी तरह का लुक ले रखा था जैसे वो पहले हुआ करता था, चेहरे से बिल्कुल शार्प और कुछ नपे तुले हाव भाव। जैसे ही आरव ने मीटिंग रूम में कदम रखा, वहां मौजूद हर शख्स उसकी तरफ देखने लगा, खास करके फैज़ एजाज खान। इस प्रोजेक्ट से जुड़े होने की वजह से वो वहीं पर मौजूद था। आरव ने वहां कदम रखते ही माहिरा से पहले फैज़ की तरफ सख्त निगाहों से देखा और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वहीं आरव को देखते ही फैज़ ने अपने मन में कहा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मानना पड़ेगा उस ऊपर वाले की रहमो करम को, उस कुदरत को जो कब क्या खेल खेलती है हम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। मिसेस खुराना के साथ साथ आरव खुराना भी मेरी आंखों के सामने है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर किसी को उस ऊपर वाले का जीता जागता करिश्मा देखना हो तो वो इन दोनों से मिल ले, वही शक्ल वही सूरत। फैज़ काफी देर तक आरव को गौर से देखता रहा। उसके एक्सप्रेशंस को माहिरा ने नोटिस किया तो उसने फैज़ को नॉर्मल करने के लिए कहा, मिस्टर खान आप तो ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। ये मिस्टर खुराना है, मिस्टर आरव खुराना, जो हमारे साथ इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जुड़ने वाले हैं। माहिरा ने जानबूझकर आरव के नाम पर जोर दिया। फैज़ ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आरव वहां आकर बैठ गया। माहिरा ने एक एक करके वहां मौजूद लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर वो बोली, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए हमने चंडीगढ़ को इसलिए चुना क्योंकि ये सिटी हमेशा से मेरी पहली पसंद रही है। सिटी की लोकेशन, यहाँ रहने वाली पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज के हिसाब से ये सिटी परफेक्ट है। यहाँ लिमिटेड रश है और सिटी काफ़ी क्लासी भी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम शहर के अलग अलग हिस्सों में मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट और भी बाकी कई स्मार्ट बिल्डिंग बनाएंगे, जो कि टोटली एडवांस्ड होगा और टेक्नोलॉजी से चलेगा। यही था माहिरा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसे सुनने के बाद सभी ने उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। आरव इन सब में काफ़ी चुप था, साथ में फैज़ भी। लगभग दो घंटे की लंबी मीटिंग के अंदर माहिरा ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि वो बारीकी से बताने जाती तो शायद टाइम कम पड़ जाता। मीटिंग के बाद एक एक करके सब वहां से जाने लगे, यहां तक कि एक बार के लिए फैज़ भी वहां से चला गया था। अब मीटिंग रूम में सिर्फ आरव और माहिरा ही बचे थे। उन सब के जाने के बाद माहिरा आरव के पास आई और उसकी आम पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोली, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट? माहिरा के इस तरह आरव के छूने पर वो उसके हाथ को घूर कर देख रहा था, तो माहिरा ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। आरव ने जवाब में कहा, प्रोजेक्ट काफी अच्छा है बट अभी भी इस पर काम करना बाकी है। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, आपको बाकी सिटीज को भी सिलेक्ट करना चाहिए था। हाँ वो मैं बाद में कर लूंगी, और सबसे पहले तो मुझे आप कहना बंद करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, माहिरा ने तुरंत जवाब दिया। मुझे पर्सनल रिलेशन बनाना पसंद नहीं है मिस लूथरा, तो बेटर होगा कि हम प्रोफेशनली ही एक दूसरे से जुड़े रहें और उसी हिसाब से एक दूसरे के साथ पेश आएं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आरव ने जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगा। वो जानता था कि वो माहिरा के साथ कितना भी रूड क्यों ना हो जाए, लेकिन माहिरा कभी उस पर गुस्सा नहीं करेगी और ना ही उसे प्रोजेक्ट से बाहर निकालेगी। आरव के जाते ही माहिरा ने आइज रोल की और हल्का मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं बदला है ये, आज भी कोई चीज पसंद नहीं आती है तो सीधा मुंह पर बोल देता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा हर गुस्सा और रूडनेस भी झेल लूंगी मैं, आखिर पहले भी झेला है। तुम कोई गैर नहीं हो आरव, मेरे अपने हो, तो तुम्हारी नाराजगी और प्यास सब कबूल है मुझे, बशर्ते तुम्हें उम्र भर के लिए मेरे साथ रहना होगा। माहिरा ने कुछ पल आरव के बारे में सोचा और फिर वापस अपने काम पर लग गई। वहीं जब आरव वापस जा रहा था तब अचानक फैज़ उसके सामने आ गया। आरव कुछ कहता उससे पहले फैज़ ने जल्दी से कहा, बात करनी है हमें आपसे। आरव भी फैज से बात करना चाहता था, इसलिए उसने हामी भर दी थी। आरव आज मीटिंग में भी फैज़ की वजह से ही आया था। जब आयु ने फैज़ के चंडीगढ़ होने की बात बताई तब वो समझ गया था कि वो माहिरा के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। कुछ ही मिनट में आरव फैज़ के साथ उसके रूम में था। कमरे में आते ही फैज़ ने थोड़ा एग्रेसिव होकर कहा, लिसन, इस प्रोजेक्ट से दूर रहो, अगर लाइफ ने तुम्हें दूसरा चांस दिया है तो तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। माहिरा लूथरा से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, और यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ से दूर रहो, आरव सरदंदाज में बोला। सही कहा तुमने, दूसरे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है, बेहतर होगा तुम इस वजह के बीच में ना आओ। आरव की बातें सुनकर फैज थोड़ा हैरान हुआ। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले आरव खुद ही बीच में बोल पड़ा, हाँ मुझे सब कुछ याद है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और कल तुम जिससे मिले थे वो कौन है। आयू से दूर रहो फैज खान। देखिए अब आप हमें गलत समझ रहे हैं, पिछली बार भी हमने उन्हें छोड़ दिया था और इस बार भी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो उम्र में हमसे बहुत छोटी है, हम बस आपको ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार माहिरा लूथरा ने जो भी किया उससे पहले हमने आपको आगाह किया था, इस बार भी उसके इरादे नेक नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि आपको सब कुछ याद है तो वो आपको फिर से हासिल की कोशिश करेगी, इसे जाने देते हैं। अगर उन्हें आयु के बारे में पता चला तो वो उसके साथ कुछ गलत कर देगी, किसी और के लिए ना सही, आयु के लिए रुक जाइए आरव। फैज आरव को समझाने की कोशिश कर रहा था। माहिरा ने जब आरव और आयु को मारने के लिए साजिश की थी उसके कुछ घंटे पहले फैज आरव से मिला था और उसने माहिरा के इरादों के बारे में आरव को बताया था। आरव तब चाहकर भी माहिरा को नहीं रोक पाया था, आज भी फैज उसे आगाह कर रहा था। आरव ने उसे अनसुना करते हुए कहा, मैं मेरा देख लूंगा, उम्मीद है तुम माहिरा लूथरा से कुछ नहीं कहोगे। इतना कहने के बाद आरव वहां से जाने को हुआ, तभी उसके पीछे से फैज ने तेज आवाज में कहा, तो आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली की मौत का बदला, खुद की मौत का बदला। आरव उसकी तरफ पलटा और बेपरवाही से हां में सिर हिला दिया। आगे आरव कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद फैज खुद से बोला, क्यों बार बार आप आग में हाथ चलाने की कोशिश करते हैं, पिछली बार भी आपके माहिरा पर विश्वास ने आपको धोखा दिया और इस बार भी कहीं ये सब ना हो जाए। पिछली बार आपकी जिद और गुस्से की वजह से आयु की जान चली गई थी, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, पहली मोहब्बत थी वो हमारी, भले ही पा ना सके लेकिन प्रोटेक्ट हमेशा करेंगे। फैज में भी एक जुनून था आयु को उन सबसे बचाने का। आरव वापस अपने ऑफिस आ गया था और फिर माहिरा के प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था। शाम के लगभग 7 बजे के करीब आरव फ्री हुआ और वो इस वक्त अपनी गाड़ी में था। उसने गाड़ी में बैठते ही किसी को कॉल किया और कॉल पर कहा, काम हुआ मेरा साकेत।
वो जिस शख्स से बात कर रहा था उसका नाम साकेत था। वो उम्र में लगभग 35 साल के आसपास था और इस वक्त उसी हॉस्पिटल में खड़ा था जहां आयु इंटर्नशिप कर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अपने जैसा कहा था वैसे मैंने कर दिया है। वो डॉक्टर सिंघानिया यहाँ किसी सर्जरी की वजह से आया हुआ था, सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे सक्सेसफुली करने के बाद उसने काउंसलिंग क्लासेस ली जो अभी तक चल रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स को पास दिए जा रहे थे, मैम का पास मैंने चुरा लिया था और एक्स्ट्रा पास जो भी थे वो सारे खरीद कर बाकी स्टूडेंट में बांट दिए, इस वजह से उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आरव ने आयु को रोकने के लिए पूरा इंतजाम किया था और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। आयु डॉक्टर सिंघानिया का सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई थी, ये सुनकर आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। क्या कर रही है वो इस वक्त, और तुमने देखा डॉक्टर सिंघानिया को, क्या सच में हैंडसम है वो, अचानक आरव ने पूछा। आरव की बात का जवाब देने से पहले साकेत कुछ पल रुका और फिर भौहें उठाकर कहा, मैम इस वक्त पार्क में अकेली बैठी है और काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रही हैं, उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी। रही बात डॉक्टर सिंघानिया की तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साकेत ने आरव के सामने डॉक्टर सिंघानिया की कोई तारीफ नहीं की, वो जानता था कि अगर उसने उसके बारे में कुछ भी अच्छा बोला तो आरव उस पर पक्का गुस्सा करेगा। ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, वहीं साकेत आयु की तरफ देख रहा था, उसे आयु पर दया आ रही थी। डॉक्टर सिंघानिया का सेमिनार अटेंड करने के लिए उसने खास मेहनत की थी। इस वक्त उसने आरव का ही दिया हुआ बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था जो लॉन्ग स्लीव्स का था और ऑफ शोल्डर था। आयु ने अपने बालों को कर्ल भी करवाया था और चेहरे पर मेकअप हल्का करवाने के बाद वो काफी खूबसूरत लग रही थी, पर इस वक्त उसका मुंह बना हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे निर्वाण सर से शादी करनी थी पर मिला कौन, वो आरव खुराना, जरूरी है उसी ने किया होगा। आयु वहां रोनी सूरत बनाकर बैठी थी, तभी उसने देखा डॉक्टर सिंघानिया खुद उस तरफ चलकर आ रहे थे। बीच सेमिनार में उन्हें इमरजेंसी का मैसेज आया था, इस वजह से वो सब कुछ छोड़कर अकेले में बात करने के लिए उस तरफ आ रहे थे। वहीं उन्हें देखकर आयु के चेहरे पर चमक आ गई। डॉक्टर सिंघानिया जो उम्र में 30 साल के आसपास थे, लंबी हाइट और दिखने में वाकई हैंडसम थे, शायद इसी वजह से आयु का उन पर क्रश था। जैसे ही आयु ने उन्हें देखा वो अपना बैग वहीं पर छोड़कर डॉक्टर सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगी। जल्दबाजी में उसने अपनी हील्स तक नहीं पहनी थी। आयु जल्दी से उनके सामने गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हेलो डॉक्टर सिंघानिया, मुझे आपसे मिलना था पर आपका सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई, मैं यहीं पर काम करती हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ, आई एम डॉक्टर आयु सिंह ओबेरॉय। डॉक्टर सिंघानिया ने जैसे ही आयु को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वो जैसे अपनी जगह पर जम गया हो। आयु ने उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक करना चाहा तो अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी, तभी डॉक्टर सिंघानिया ने उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया था।
आप ठीक तो है ना, अचानक उसके मुंह से यही निकला। बताओ कौन है।